یو این سماچار کے تازہ انک کے ساتھ میں ہوں محبوب خان۔ 2 اگست 2019 کے اس ساپتاہک انک میں شامل ہیں، جلوایو پریورتن کے ورودھ دوڑ جیتنی ہی ہوگی، مہا سچیو کی پکار۔ مانو تسکری کی زیادہ تر شکار مہیلائیں و لڑکیاں۔ سشستر سنگھرشوں کا بچوں پر بڑھتا قہر۔ ماں کے دودھ کے انگنت فائدے، پھر بھی کیوں ہے بے پرواہی۔ اور بھارت میں شیکشڑک سنستھانوں میں یون شکشا کا مقابلہ کرنے کے ابھیان میں سکریہ ایک یوا چیمپئن ریتو جین سے خاص بات چیت۔ ہم یاد دلاتے چلیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی آئیں، جہاں آپ کو وشو پریپریکش والی ملٹی میڈیا سامگری ملے گی۔ آئیے اب سنتے ہیں سماچار وستار سے۔ سنیکت راشٹر مہا سچیو انتونیو گوٹیریش نے جلوایو کی آپات استھتی اور بڑھتے ویشوک تاپمان پر چنتا ظاہر کرتے ہوئے وشو نیتاؤں سے آگامی شکھر وارتا میں ٹھوس جلوایو کارروائی کے لیے بڑھی ہوئی مہتوکانکشا کے ساتھ آنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے چیتاونی جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر جلوایو پریورتن سے نپٹنے کے لیے کارروائی ابھی نہیں کی گئی تو دنیا کو جلد اس کے دشپریڑام جھیلنے پڑیں گے۔ زیادہ جانکاری کے ساتھ سچن گوڑ۔
نیویارک میں یو این مکھیالے میں پترکاروں کو سمبودھت کرتے ہوئے مہا سچیو انتونیو گوٹیریش نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب اس موسم میں تیز گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کئی معنوں میں الگ ہے۔ تاپمان کا اونچا استر اب ریکارڈ توڑ رہا ہے۔
According to the very latest data from the World Meteorological Organization and its climate center, the months of July at least equaled, if not surpassed,
وشو موسم وگیان سنگٹھن کے تازہ آنکڑوں کے مطابق اس ورش کا جولائی مہینہ اتہاس میں اب تک کے سب سے گرم مہینے کے ریکارڈ کو یا تو پار کر لے گا یا پھر اس کی برابری کرے گا، اور اس سے پہلے جون کا مہینہ بھی بے حد گرم رہا تھا۔ یو این پرمکھ انتونیو گوٹیریش کے شبد۔ اب تک ملے رجحانوں کے انوسار ہم ایسے سمے کی اور بڑھ رہے ہیں جب ورش 2015 سے 2019 اتہاس کے 5 سب سے گرم ورشوں میں لگاتار شامل ہوں گے۔ یو این مہا سچیو نے سچیت کیا ہے کہ اگر جلوایو پریورتن پر ہم ابھی کارروائی نہیں کرتے ہیں تو چرم جلوایو والی گھٹنائیں صرف ایک شروعات بھر ہیں۔ یورپ میں اونچا تاپمان، گرم ہوا کی لہریں اب آرکٹک اور گرین لینڈ میں تاپمان بڑھائیں گی، اور یہ ایک ایسے سمے میں ہوگا جب آرکٹک میں برف کا استر پہلے ہی ریکارڈ نچلے استر پر ہے۔ اگرنی ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ ویشوک تاپمان میں بڑھوتری کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک سیمت رکھنا ضروری ہے تاکہ جلوایو پریورتن کے بے حد خطرناک دشپربھاؤں سے بچا جا سکے۔ تیز گتی سے ہو رہی جلوایو پریورتن کو مہا سچیو نے ایک ایسی دوڑ بتایا ہے جس میں مانوتا کا جیتنا ضروری ہے۔
Preventing irreversible climate disruption is the race of our lives and for our lives.
اپریورتنیہ جلوایو ویودھان کی روک تھام کرنا ہمارے جیون کے لیے ایک دوڑ ہے، اور یہ دوڑ ہم جیت سکتے ہیں اور ہمیں جیتنا ہی ہوگا۔ مہا سچیو گوٹیریش کے شبد۔ انہوں نے اسپشٹ کیا کہ جلوایو کارروائی کی تتکال ضرورت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس ورش 23 ستمبر کو یو این مکھیالے میں ایک شکھر وارتا کا آیوجن کیا ہے۔ سرکاری، ویوسائک اور ناگرک سماج کھیتر سے جڑے نیتاؤں کو انہوں نے اسپشٹ روپ سے کہہ دیا ہے کہ اس بیٹھک میں سندر بھاشنوں کے ساتھ نہیں بلکہ ٹھوس کارروائی کی یوجنا اور بڑھی ہوئی مہتوکانکشا کے ساتھ آنا آوشیک ہے۔ اس کے لیے گرین ہاؤس گیس اتسرجن میں ورش 2030 تک 45% کی کٹوتی کرنی ہوگی، اور 2050 تک کاربن نیوٹریلٹی یعنی نیٹ شونیہ کاربن اتسرجن حاصل کرنا ہوگا۔
مہا سچیو انتونیو گوٹیریش نے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ مانو تسکری ایک ایسا جگنیا اپرادھ ہے جس سے دنیا کا ہر علاقہ پربھاوت ہوتا ہے، وشیش روپ سے مہیلائیں اور بچے۔ منگلوار 30 جولائی کو مانو تسکری نیرودھک دیوس کے اوسر پر مہا سچیو نے یہ سندیش دیا۔ مانو تسکری کو روکنے کے بارے میں جاگروکتا بڑھانے کے لیے ہر ورش یہ دیوس 30 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ شیوانی کالا سے زیادہ جانکاری۔
مانو تسکری کو روکنے کے بارے میں جاگروکتا بڑھانے کے لیے ہر ورش یہ دیوس 30 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ مادک پدارتھوں اور اپرادھ پر سنیکت راشٹر کے کاریالے کے آنکڑوں کے انوسار مانو تسکری کے نظر میں آئے معاملوں میں 72% پیڑت महिलाएं और बच्चे होते हैं। गंभीर चिंता की बात यह है कि मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों की संख्या वर्ष 2004 के मुकाबले 2016 में बढ़कर 2 गुना हो गई। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने संदेश में कहा कि मानव तस्करी के पीड़ितों में से ज्यादातर को यौन शोषण के लिए इस जघन्य अपराध का शिकार बनाया जाता है। जबरन मजदूरी कराने के लिए भी इंसानों की तस्करी की जाती है। बच्चों को लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए भी मानव तस्करी होती है। मानव तस्करों का शिकार बनने वाले ज्यादातर लोग प्रवासी होते हैं। उनमें ऐसे शरणार्थी भी होते हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से अपने मूल देशों या स्थानों को छोड़ दिया होता है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि सशस्त्र संघर्षों, विस्थापन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और गरीबी जैसी परिस्थितियों की वजह से नाजुक हालात बनते हैं। बहुत से लोगों की हताशा की वजह से भी मानव तस्करी को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। एंटोनियो गुटेरेश ने दुख जताया कि मानव तस्करों और प्रवासियों को निशाना बनाने वाले गिरोहों के हाथों समुद्रों, रेगिस्तानों और बंदी गृहों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ये तस्कर अपने इस क्रूर और हैवानियत वाले कारोबार में मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का कहना है कि बहुत से देशों में कानून तो बने हुए हैं, लेकिन मानव तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को न्याय के कटघरे में पहुंचाने के लिए ठोस उपाय करने की सख्त जरूरत है। उससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि मानव तस्करी के पीड़ितों की शनाख्त करके उनके लिए सुरक्षा व ऐसी सेवाएं मुहैया कराई जाएं जिनकी उन्हें जरूरत है।
दुनिया भर में सशस्त्र संघर्षों में मारे जाने वाले और अपंग होने वाले बच्चों की संख्या वर्ष 2018 में 12,000 का आंकड़ा पार कर गई। जब से संयुक्त राष्ट्र ने इस विषय में आंकड़ों की निगरानी करना आरंभ किया है, तब से अब तक की ये सबसे बड़ी संख्या है। सोमालिया, सीरिया, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और माली जैसे देशों में हिंसा बच्चों से उनका बचपन छीन रही है। सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की व्यथा को टटोलती एक नई रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं। साल 2018 में बच्चों और सशस्त्र संघर्षों के मामलों में 20 अलग अलग संघर्षों में हनन के 24,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। लड़ाई के दौरान अधिकांश मामलों में बच्चों की मौत गोलीबारी, IED विस्फोट और बारूदी सुरंगों की चपेट में आने से हुई। बच्चे और सशस्त्र संघर्ष के विषय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की विशेष प्रतिनिधि वर्जीनिया गामा ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि सशस्त्र संघर्षों में बच्चे बड़ी संख्या में पिस रहे हैं और लड़ाई की वजह से उन्हें मरते हुए या अपंग होते हुए देखना भयावह है। ये अति आवश्यक है कि सभी पक्ष बच्चों के संरक्षण को प्राथमिकता दें। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। लड़ाई लड़ रहे पक्षों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्चों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी और ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हनन को रोका जा सके। रिपोर्ट के अनुसार लड़ाकों के रूप में बच्चों की भर्ती और इस्तेमाल बदस्तूर जारी है और विश्व भर में 7,000 से ज्यादा बच्चों का मोर्चों पर लड़ाई और अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। बच्चों की सैनिकों के तौर पर भर्ती के मामले में सोमालिया सबसे आगे है और उसके बाद नाइजीरिया और सीरिया का नंबर आता है। हालांकि रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि जिन बच्चों को आज़ाद कर दिया गया उनका आंकड़ा भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है और ये संयुक्त राष्ट्र और लड़ाई में शामिल अन्य पक्षों में सीधे बातचीत का नतीजा है, जिससे हजारों बच्चों को उम्मीद की किरण नजर आई है। इसमें जरा भी शक नहीं है कि माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत से फायदों वाला यानी अमृत समान होता है, मगर दुनिया भर में माँ बनने वाली महिलाओं को नर्सिंग की समुचित सुविधाएं मुहैया कराने वाली नीतियां मौजूद नहीं है, विशेष रूप से कामकाज के स्थानों पर। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की अध्यक्ष हेनरिएटा फोर ने बुधवार को ये बात कही। दुनिया भर में शिशुओं को जन्म के पहले 6 महीनों के दौरान माँ का दूध मिलने और बच्चों की समुचित देखभाल करने की जरूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के वास्ते हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष ये सप्ताह मनाए जाने के दौरान तथ्यों पर आधारित एक नया दस्तावेज भी जारी किया गया है, जिसका नाम है 2019 ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग स्कोर कार्ड। इसमें अन्य तथ्यों के अलावा ये महत्वपूर्ण वास्तविकता बताई गई है कि वर्ष 2018 में हर 10 शिशुओं में से सिर्फ 4 को ही विशिष्ट तौर पर माँ का दूध पिलाया गया। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में शिशुओं को माँ का दूध पिलाए जाने की दर ज्यादा थी। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने कहा कि बच्चों को माँ का दूध पिलाने के अनगिनत स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक फायदे जच्चा बच्चा दोनों को ही होते हैं और ये सच्चाई पूरी दुनिया में समझी और स्वीकार की जाती है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में लगभग 60% शिशुओं को जन्म के पहले 6 महीनों के दौरान माँ का दूध नहीं मिल पाता, जबकि चिकित्सकों के अनुसार इन 6 महीनों के दौरान शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। शिशुओं के लिए माँ के दूध के फायदे व्यापक और बेमिसाल हैं। मसलन, ये शिशुओं और बच्चों के मस्तिष्क का स्वास्थ्य विकास करता है, शिशुओं को संक्रमणों से बचाता है, मोटापे और बीमारियों का खतरा कम करता है, स्वास्थ्य की देखभाल पर आने वाला खर्च कम करता है और महिलाओं के लिए ओवरी व छाती के कैंसर से भी बचाने में मदद करता है। हेनरिएटा फोर का कहना था कि कामकाज के सभी स्थानों पर महिलाओं को अपना दूध अपने शिशुओं को पिलाने की सुविधा देने और वेतन सहित अभिभावक छुट्टियों का इंतजाम करने में ज्यादा संसाधन निवेश करने होंगे। दुनिया भर में ब्रेस्ट फीडिंग की दर बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यूनिसेफ की अनुशंसा के अनुसार कामकाज के स्थानों पर महिलाओं को अपने शिशुओं को दूध पिलाने के लिए नियमित अंतराल पर विराम मिलना चाहिए। इनमें महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अनुकूल माहौल भी मुहैया कराना जरूरी है ताकि वो अपने शिशुओं को 6 महीने तक बिना किसी बाधा के अपना दूध पिलाना जारी रखें। जन्म के पहले 6 महीनों के बाद भी बच्चे की उम्र के अनुसार उन्हें माँ का दूध मिलता रहे, इसके लिए भी महिलाओं को अनुकूल वातावरण मुहैया कराना बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात है कि महिलाओं को समर्थन वाला माहौल नहीं मिल पाता है। दुनिया भर में कामकाज के स्थानों पर सिर्फ 40% महिलाओं को ही बुनियादी मातृत्व सुविधाएं हासिल होती हैं। कुछ अफ्रीकी देशों में तो ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखने के फायदे सिर्फ 15% महिलाओं को ही मिल पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मातृत्व संरक्षा कन्वेंशन 2000 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार महिलाओं को कम से कम 14 सप्ताहों की वेतन सहित मातृत्व छुट्टियां मिलनी चाहिए। सिफारिश तो कम से कम 18 सप्ताहों की छुट्टियों की है। साथ ही कामकाज के स्थानों पर महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अनुकूल माहौल और सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बावजूद दुनिया भर में सिर्फ 12% देशों में ही महिलाओं को वेतन सहित मातृत्व छुट्टियां दी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जुलाई में उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में दुनिया भर से विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इनमें अनेक युवा भी शामिल थे जो विभिन्न टिकाऊ विकास लक्ष्यों में अपना योगदान देने में सक्रिय हैं। ऐसी ही एक युवा रितु जैन से हमने बातचीत की जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यौन हिंसा से बचने के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में सक्रिय हैं।
आप अपना नाम बताएं और ये बताइए कि यहाँ यूएन मुख्यालय में किस पड़ाव के तहत आए हैं।
मेरा नाम रितु जैन है, मैं राजस्थान इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मैं रेस्टलेस डेवलपमेंट में एज अ यूथ अकाउंटेबिलिटी एडवोकेट काम करती हूँ। रेस्टलेस डेवलपमेंट एक एनजीओ है जहाँ पे ये लोग युवा लोगों को फोरफ्रंट पे रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं और देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनके काम में इन्वॉल्व हों और जो देश की प्रगति में योगदान दे सके।
तो आपका जुड़ाव इस संस्था से कैसे हुआ, कि आपकी शैक्षिक बैकग्राउंड क्या है, तो आपने ये सफ़र कैसे तय किया?
मैंने ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में किया है और मेरा मास्टर्स सोशल वर्क में है। तो मेरी पढ़ाई पिछले साल ख़त्म हुई और उसके बाद रेस्टलेस डेवलपमेंट ने ऐसी यूथ अकाउंटेबिलिटी एडवोकेट जैसी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर निकाली जिसमें मैंने अप्लाई किया और फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें ये लोग हमें सिखाते हैं कि आप ग्राउंड में जाकर ये कैसे काम करेंगे। हमें SDG पे काम करना सिखाते हैं और मैं SDG 5 पे काम करती हूँ, जेंडर इक्वालिटी, जिसमें मेरा स्पेसिफाइड टॉपिक रहता है सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट मेन एंड वुमेन इन कॉलेजेस, क्योंकि आजकल समाज में स्पेशली शैक्षणिक संस्थाओं में भी ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं लेकिन बच्चे किसी को बोल नहीं पाते हैं।
जब आप ये काम करती हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों से बातचीत करते होंगे और बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है?
डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि जब युवा एक जाकर के युवा से बात करता है तो युवा को थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा होता है, वहीं एक कोई बड़ा आदमी जाके पूछेगा तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन एक 23-24 साल का आदमी अगर 20 साल के लड़के या लड़की से जाके पूछेगा तो उसको कंफर्टेबल होता है और वो ईजिली बता पाता है। फिर भी शुरू शुरू में जब मैं कॉलेज जाती थी या मैं यूनिवर्सिटी जाती थी जगह जगह, तो थोड़ा लोग हेजिटेट करते थे, शुरू में नहीं बताते थे क्यों, और स्पेशली जो फैकल्टीज होती हैं या जो चांसलर होते हैं वो कुछ नहीं बताते क्योंकि उनके कॉलेज की इज्जत खराब होती है, तो बच्चों से अलग से बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब धीरे धीरे एक बार दो बार तीन बार उनसे मिलते हैं तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर वो आराम से बताते हैं, हाँ ठीक है अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ और उसके बाद उस पर कुछ एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया।
ये बिल्कुल बड़े काम की बात है। ख़ासतौर से एक बात और पूछेंगे कि यूथ या जो युवा है वो तो आपकी बात को आसानी से समझ लेंगे और जाहिर सी बात है कि वहीं से शुरुआत होगी इस चुनौती का सामना करने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के या जो इदारे हैं या संस्थाएं हैं उनके जो एडमिन सेक्शंस होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं उनमें आपको लगता है कि कुछ सख्ती नज़र आती है कि ये कैसे इसको हैंडल करें क्योंकि आपने कहा इज्जत ख़राब होती है?
हाँ, इन लोगों से बात करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में जेंडर सेल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे आकर के अपने बारे में बता सकते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया या इसने मेरे साथ सही किया। जब मैं इतने सारे कॉलेजेस में गई, यूनिवर्सिटीज़ में गई, हार्डली थोड़े बहुत कॉलेजेस में थे कि जेंडर सेल्स हैं, कुछ में तो थे ही नहीं और कुछ में थे वो एक्टिव नहीं थे। तो उसके थ्रू पता चला क्योंकि एडमिन कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे कॉलेज में गलत होता है, उनके अकॉर्डिंग उनका कॉलेज में कुछ भी गलत नहीं होता, बच्चे एकदम सेफ होते हैं और माँ बाप को वो यही दिलासा दिलाते हैं कि आप यहाँ छोड़ के जाइए, आपके बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा इस शैक्षणिक संस्थान में। लेकिन जब बच्चा वहाँ जाता है तो कभी उसके साथ अश्लील बातें होती है या फिर इनअप्रोप्रिएट टचिंग, गलत तरीके से छूना, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें रेप तक ही पहुँचें या सब सेक्शुअल वायलेंस तक ही पहुँचे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं या मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती कि किसी ने मेरे को इस तरीके से छुआ, लेकिन अगर जेंडर सेल्स एक्टिव होंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे और इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकेगा।
इसी से संबंधित ये बताएं क्योंकि अभी भी समाज में परिवार में बहुत सारे रूढ़िवादी माहौल होता है, तो क्या कभी समाज के लोगों से आपकी बात हुई, जैसे जो प्रभावित लड़के लड़कियां हैं उनके परिवारों से या समाज से या जो लोकल बड़ी क्लोज कम्युनिटीज होती हैं उनमें बड़ी नाक की बात होती है कि हमारी नाक कट जाएगी,
हाँ।
वहां से आपको किस तरह का माहौल मिलता है?
इस पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने पॉक्सो में काम किया था। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, जो इंडियन गवर्नमेंट की एक धारा है, 2012 में आई थी, जिसमें स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो ये धारा केवल उन्हीं के लिए, इनकी कोर्ट अलग से बनाई गई है। इस पे जब मैंने काम किया इसके इम्प्लीमेंटेशन पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जाने, तो बच्चे, मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रही थी जिसमें मेरे को ही बोलना था और बताना था बच्चों को, तो एक बच्ची आकर के रोने लग गई, साइड में बैठ गई और वो चली गई अंदर। तो वो तब मैं बड़ी शौक हुई ये देख के, और जब मैं उसकी माँ के पास गई तो उसकी माँ ने बोलने से मना कर दिया कि नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। एक वो छोटी इलाका था, छोटी बस्ती थी, लोग थोड़े बहुत लोग वहाँ रहते थे, क्लोज कम्युनिटी बेसिकली, तो क्लोज कम्युनिटी थी, वो शुरू में नहीं बोली। उनसे एक बार, दो बार, तीन बार, हमें बहुत बार वहाँ पे जाकर के वर्कशॉप करनी पड़ी, तब वहाँ के लोग निकल के आए, लेकिन वो कभी ऐसे इतने सारे लोगों में नहीं बोलते। अगर ऐसे लोगों से मिलना है और उनसे जानना है ऑन ग्राउंड की चीज़ें सही में होती है या नहीं होती है, उनसे एक से एक वार्तालाप, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है।
हम आपको याद दिलाते चलें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाले समाचार पढ़ने, सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें, जिसका पता है news.un.org/hi। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रमों में आपसे फिर मुलाकात होगी।